لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارا نمبر 6. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ دیکھیے کہ اس پارے کا آغاز ہے اللہ کی پسند اور ناپسند سے. جو چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند وہ کیا ہے کہ دوسروں کی برائیوں کا سر عام چرچا کرنا. آج بہت سارے لوگ دین کے نام پر عبادات تو کرتے ہیں لیکن انسانی معاملات میں ناکام ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے حقوق اللہ اور حقوق العباد امتحان کے دو بچے ہیں، دونوں میں الگ الگ پاس ہونا لازم ہے. میرا آپ کا عمل یہ ہے کہ کبھی بھی کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو آئینے والا کام کریں اور اس کو اس کی برائی پیار سے اچھے طریقے سے بتائیں. جتنی ہے اتنی انداز اچھا ہونا چاہیے، طنز کا انداز نہیں ہونا چاہیے، تانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں سے اس کی باتوں کا چرچا نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیماری ڈاکٹر کو ہی بتاتے ہیں اور جس اس کی خرابی ہوتی ہے اسی کا ذکر کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر کو بتائی جانے والی باتیں کوئی لائر کو بتانے لگے تو فائدہ ہوگا. تو آج کے بعد کبھی بھی کسی کی کوئی بات کسی سے کرنے لگیں تو چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، فائدہ ہوگا کیا؟ اس کا علاج کر لے گا؟ مرض زیادہ تو نہیں بڑھتا جائے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے دین میں رسولوں کے مقام کو واضح کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات پیش کر کے ہم سب کو یہ سبق دیا کہ جب قومیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے اس پہ باتیں چھانٹنے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششوں کا تذکرہ بھی ہے اور اس جگہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ سود حرام کیا گیا تھا بنی اسرائیل پر بھی، لیکن جیسے آج ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ مذہبی فریضہ ہیں. ڈر اس بات کا ہے کہ جس شدت سے ہم مسلمان ان چیزوں میں آگے جاتے جا رہے ہیں آنے والی نسلیں شاید اس بات پہ حیرت کا اظہار کریں جب کوئی ان کو یہ کہہ دے کہ تم کو پتہ ہے کہ تمہارے قرآن میں سود حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے عملی سے بچا دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ان کا مقصد کیا تھا، کہ یہ لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے، نہ تو پکڑ کے اس ہدایت پہ جما سکتے تھے اور نہ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا، اور کوئی اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت پہ جما نہیں سکتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے کر اہل کتاب کے ناطے آج ہم مسلمانوں کو غلوف سے روکا گیا. غلوف کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حد سے یا تو بڑھا دینا یا کم کر دینا. آج بھی آپ دیکھیے دو طرح کا غلوف ہے. ایک تو وہ ہے کہ دین پہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا اور یہ سوچ لینا کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے راضی ہوگا، اور دوسری طرف غلوف یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کے نام پر اپنے دین کو شدت کے ساتھ پیش کر دیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی رخصتیں ہیں اس کو بھی قبول نہ کریں، لوگوں کو اتنا ناقابل عمل قسم کا دین پیش کریں. اور فضیلتوں اور روایات کی ایک ایسی داستان ہے کہ لوگ بعض دفعہ کھانا کھاتے ہوئے بھی گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید اچھے کھانے کھانے والے جنت میں نہیں جائیں گے، شاید اچھے کپڑے پہن لیے تو پھر جہنم کے کپڑے پہننے پڑیں گے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلوف سے بچائے. سب سے برا غلوف جو آج کے دور میں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں، کہ جہاں ان کے مقام کو کم یا زیادہ کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچا کے رکھے. اس کے بعد سورت مائدہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں واقعی پابندیوں کی بات ہے. اوف بالعقود، عہدوں کو پورا کرو. حقیقت یہ کہ مومن کی زندگی پابند زندگی ہوتی ہے، وہ شتر بے مہار کی طرح چلتا پھرتا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی پرابلم، یہ میری مرضی ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشنز لینی پڑتی ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت بھی ہے. پھر ایک خوبصورت اصول دیا، تعاون علی البر و تقوی، نیکی اور تقوی میں تو مدد کرو، ولا تعاون علی الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی پہ تعاون نہ کرو. بعض دفعہ لوگ دوستیوں کے نام پہ، بعض دفعہ خاندان کے نام پہ، بعض دفعہ محبتوں کے نام پہ غلط چیزوں پہ تعاون کرتے ہیں. اپنے لیے عمل بنائیے کہ آج کے بعد جب بھی کبھی کسی کی کسی چیز میں مدد کرنے لگیں تو اس آیت کو سوچ لیجئے، کیا یہ تعاون نیکی کے کام میں ہے یا بدی کے کام میں. اور اس کے بعد وہ خوبصورت آیت ہے کہ جس نے دوسروں کو رشک میں مبتلا کر دیا تھا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے جس میں تکمیل ہے، किस चीज़ की अल्योम अकमल तुलकुम दीनकुम। मैं और आप खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपको एक मुकम्मल दीन दिया। अब इसमें मेरी आपकी किसी कमी बेशी की ज़रूरत नहीं है। जैसे घर बनता है तो उस वक्त जो मर्ज़ी उसमें चेंजेस कर दी जाए तो घर खूबसूरत भी होगा, बड़ा भी होगा, कुशादा भी होगा। लेकिन बने हुए घर में अगर दीवारें डाल दें या उसके अंदर कुछ छतों पर एक और छत डाल दें तो बस जब आप देखते हैं कि घर की खूबसूरती भी कम होती है, गुंजाइश भी कम होती है। आज हमारे दीन पर रस्म रिवाज के नाम पे, बिदात के नाम पे, ख़ानदानी तौर तरीक़ों के नाम पे इतनी ज़्यादा तब्दीलियां कर दी गई कि असल दीन का जो खूबसूरत कुशादा सा कमरा था वो ख़त्म होता हुआ दिखता है और एक बोझल सा दीन लोगों की नज़रों में है। फिर इसमें फिर इशारा मिलता है अहले किताब की पाक दामन औरतों से निकाह का, लेकिन शर्त यह कि छुपी दोस्तियाँ ना हों। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब देखा कि बहुत सारे लोग ये काम करने लगे तो उन्होंने पाबंदी लगा दी ये कहकर कि किताबी औरतें अपने साथ बेदीनी लाती हैं, इनके लिबास हिजाब के तकाजे ठीक नहीं होते, और अगर सबने ही ऐसी औरतों से निकाह करने शुरू कर दिए तो मोमिनात के साथ निकाह कौन करेगा। लेकिन आज के दौर के हालात के मुताबिक ये जहन में रखिएगा कि अगर किसी भी किताबिया यानी ईसाई या यहूदी औरत से निकाह किया जाए तो देखा जाए कि क्या वाकई वो असल अकायद पे है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एथियस बन चुके जो तो अब अपने दीन को भी नहीं मानते। और दूसरी बात है कि वो औरत पाक दामन है और छुपी दोस्ती से अगर एक ताल्लुक़ का आगाज़ हुआ तो आप बताइए कि उसमें बरकत कहाँ से आएगी। फिर इसके बाद वज़ू के तरीके के इशारे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़े बगैर तो हम वज़ू का तरीका भी ठीक नहीं कर सकते। यह आयत इसकी बहुत बड़ी दलील है। कुरान को हदीस की रोशनी में समझेंगे तो बात समझ आएगी, और अगर अक़ल की रोशनी में और डिक्शनरी की रोशनी में और लोगों के अफकार की रोशनी में लिया तो आप तो वज़ू में भी तरतीब को कायम नहीं रख सकेंगे। इसके बाद अदल की बात है, और अदल करना तकवा वालों ही के बस की बात होती है। फिर बनी इसराइल के नाते से वादों को तोड़ना, अहद शिकनियों को तोड़ना, इसका तस्करा करके हमको बता दिया अल्लाह का दीन या अल्लाह की शरीयत अमल के लिए आती है, सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी। और उसके बाद बड़े खूबसूरत तरीके से दावत दी गई अहले किताब को कि देखो अब वो नबी आ गया जिसके बारे में तुम कहते थे, जिसका इंतज़ार करते थे, अब इसको मान जाओ। अगर उन्होंने ये माना होता तो आज कितने लोगों का अजर वो ले जाते। लेकिन जब लीडर्स किसी बात को समझ कर भी ना माने तो फिर फॉलोअर तो उसके पीछे कभी भी नहीं लगेंगे। इसके बाद अहले किताब ही के नाते से बनी इसराइल की कुछ तारीखी व हकायक को बयान करते हुए इसके बाद एक वाक्या है जिससे आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इखलास की नेकियां कबूल करता है, हसद की कबाहत है। हाबील और काबील का वाक्या ज़मीन पर पहला कत्ल था, वजह हसद बनी। ये हसद इतनी बुरी चीज़ है कि जो भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। तो आज अगर मुसलमान मुसलमान के आगे है तो कहीं उसके अंदर भी हसद तो नहीं है। इसके बाद डकैती की सज़ा इस बारे में मौजूद है कि किस तरह से लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा कभी कोई जुरत ना कर सके। चोर की भी सज़ा है लेकिन उसकी पाबंदियाँ उसकी शराय सारी अहादीस से पढ़नी पड़ती हैं। हकीकत यह कि इस्लामी सज़ाओं से पहले दिल को इस्लाम के मुताबिक करना पड़ता है ताकि हम अल्लाह के दीन को समझ सकें। फिर बहुत सारी आयतें सूरत मायदा में जो है वो तौरात ही की कंटिन्यूशन है। यहाँ से पता चलता है कि दीन हर दौर में एक ही रहा, लेकिन लोगों ने जब मानना छोड़ दिया तो ऐसे लगा कि वो दीन का हिस्सा ही ना रहा। इसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि हर एक का एक काम करने का तरीका होता है, मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ हैं। तुम क्या करो, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में जल्दी करो क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत थोड़ा है। और हुक्मुल जाहिलिया की बात करके बता दिया कि जब कौमें इस्लाम के आने के बावजूद वही काम करने लग जाएँ जो जहालत के दौर में होते थे तो फिर उनकी नाकदरी का क्या कहना। और इसके साथ ही फिर अगली आयात में अल्लाह ताला ने वो खूबसूरत गिरोह बता दिया कि अगर आज मुसलमान अपने रब के ऊपर नज़रें लगाकर उसकी मर्ज़ी के नहीं बनते तो अल्लाह ऐसे लोगों को इस्लाम की दौलत दे देगा जो इन खूबियों से मुत्तसिफ होंगे कि युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाएम। आयत नंबर 54 को गौर से देखिएगा, यही आयत तदब्बुर है। मुझे आपको इसमें धमकी मिल रही है अल्लाह से कि ओ बोन मुस्लिम्स, ओ वो मुसलमानों जिनके माँ बाप दादा सब मुसलमान थे, अगर तुमने अपने अंदर तब्दीली पैदा न की तो मैं तुमको हटाकर दूसरों को ले आऊँगा। अल्लाह ताला हम सबको ये खूबियाँ अता फरमाए। फिर इसी तरह से वो चीज़ें जो इंसान के अंदर निफाक पैदा करती हैं उसमें से ऐसी महफिलों में बैठना जहाँ अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जाता है, खेल तमाशा समझा जाता है। अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से बचाते हुए हम सबको दावत देते हैं कि अपने दीन को संजीदगी से लो। दीन एक बहुत संजीदा मामला है, इस पर तुम्हारी जन्नत और जहन्नम का इन्हिसार है। आप देखिए एक स्टूडेंट जो कमरे इम्तिहान में बैठा और पेपर को सीरियस ही ना ले, हंसे, जोक बनाए, मजाक करे, कमेंट्स दे, क्या वो पास होगा? तुम्हें और आप इस दुनिया में एक संजीदगी की कैफियत में बैठकर सोचें कि मैं और आप वाकई हकीकत में जन्नत में जाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए वही कानून जो पिछली कौमों में था आज भी वही है कि अल्लाह के दीन को नाफिज करना होगा। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 66 में ये भी बता दिया कि जब अल्लाह की नाजिल करदा शरीयतों को किसी मुल्क में नाफिज किया जाता है तो ज़मीन भी तेल निकालती है और सोना चांदी उगलती है और आसमानों से भी रिस्क बरसता है। आज हम अपने मुल्कों में महंगाई देखते हैं तो हम सोचते हैं शायद इसकी वजह हुक्मरान है या इसकी वजह कुछ और लोग हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अल्लाह की शरीयत को अपनी ज़ात से लेकर अपनी अदालतों, अपने घरों, अपने ख़ानदानों पर लगाकर अल्लाह के इस कानून को समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला गैब से रिस्क के खजाने हम पर उंडेल देगा। और उसके साथ ही फिर बता दिया कि जब कौमें अपनी मर्जी की चीज़ों को पसंद करती हैं तो वो नबी या वो रसूल या आज के दौर में वो दीन वाले जो वो बातें पेश करते हैं जिसको उनके नफ्स पसंद नहीं करते, ला तहवा अनफुसुहुम आयत 70 में आता है कि जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती थी तो इसको रिजेक्ट करते थे। तो बस इस पे मैं और आप अपने आप को बस थोड़ा सा चेक कर लें कि क्या दीन की सिर्फ वो बातें पसंद करती हूँ जो मेरे नफ्स को अच्छी लगती हैं और ऐसे ही दीनदार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरी पसंद की बातें करते हैं, या फिर मैं हकीकत में संजीदगी के साथ इस दीन को लेती हूँ। फिर आखिर में गलुफ की बात करके बता दिया कि देखो खाने में नमक और मिर्च कम ज़्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है, चीनी मुनासिब हो तो अच्छी लगती है, ज़्यादा कर दो तो कड़वी लगती है। इसीलिए दीन को एक्सरसाइज बुक ना बनाओ, इसको मान जाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। और फिर उसके बाद आखिर में बता दिया कि जिनके दिल नरम होते हैं उनको हिदायत मिलती है और जो वाकई हिदायत लेने के लिए ये सब बातें करते और सुनते हैं, अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे। पूरे बारे में जो बात आपके मेरे सामने अमल के नुक्तों के नाते से आई वो क्या थी कि हम वाकई अल्लाह ताला से मदद मांगें कि हमारा अखलाक अच्छा कर दे, हम दूसरों की बुराइयों के चर्चे ना करें, हम अच्छे तरीके से लोगों से मामला करें, कोई मुश्किल आए तो अल्लाह को पुकारें, दीन के काम करने के लिए अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करें जो अल्लाह ताला ने हमें रिकमेंड की, और दिन ब दिन अपने ईमान को बढ़ाते जाएं। कसरत से इस्तग़फ़ार करना है, नफ्स के ख़िलाफ़ अगर कोई काम करना पड़े तो अल्लाह से अजर की उम्मीद रखनी है, और दीन का कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अल्लाह के लिए जो बड़ी ज़ात है। और हकीकत में अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र वाला बनाए, और आज की जो तदब्बुर की आयत है उस पर भी अल्लाह ताला मुझे आपको गौर व फिक्र वाला बना दे कि क्या हम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि अल्लाह ताला मुझे आपको हटाकर दूसरों को हमारी जगह पे ले आए। दीन का कोई भी काम आपके ज़िम्मे लगा दिया जाए तो उस वक्त इस बात को याद रखिएगा, अगर मैं इसका हक अदा नहीं करूँगी तो ये काम मुझसे लेकर दूसरों को दे दिया जाएगा। तो आयत नंबर 54 आज के पारे की आयत तदब्बुर है, अल्लाह ताला गौर व फिक्र वाला बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।